ओम शांति। किसी एक राज्य के राजा को अपनी बेटी का विवाह करना था और उसने एक अजीब सी शर्त रखी। शर्त बहुत कठिन, बहुत भारी थी। उसने कहा कि एक ऐसा कवच है राज घराने में, उसे पहनना पड़ेगा और एक किला है बहुत ऊंचाई में जिसमें 500 सीढ़ियां हैं। जो वो कवच पहनकर उन 500 सीढ़ियों के ऊपर चलकर उस किले तक पहुंचेगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। तो बहुत सारे युवक आते हैं उमंग उत्साह के साथ, पर वो जैसे ही कवच पहनता है जो भी, आधी हिम्मत खत्म हो जाती है, क्योंकि वो इतना भारी है, इतना भारी है। उन्होंने आज तक ऐसा कवच न भूतों न भविष्यति कभी देखा ही नहीं था। तो पहला युवक आया जिसने वो कवच पहना और उसको लगा पता नहीं क्या हो गया, इतना वजनी है वो, और सीढ़ियां चढ़ने जाता है, पहला कदम रखता है ऐसा हांफने लगता है, सिर चकराता है, 999 सीढ़ियां उसको चक्कर आने लगते हैं और गिरता है। दूसरा वो भी उस कवच को पहनता है जो इतना भारी है, इतना भारी है, पहली सीढ़ी चढ़ता है, बहुत हिम्मत करता है, दूसरी सीढ़ी चढ़ता है, परंतु उसके बाद में हिम्मत हार जाता है। कई आते हैं, एक दो बस इतनी ही सीढ़ी चढ़ पाते हैं और गिर जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। अंततः एक युवक आता है जो उस कवच को पहनता है, पहली सीढ़ी लंबी लंबी सांसें लेता है, दूसरी सीढ़ी बहुत मुश्किल, तीसरी सीढ़ी पर पांव रखता है, अब तो उसकी हिम्मत नहीं होती आगे जाने की, इतना भारी पहनकर आगे जाना, परंतु बहुत कोशिश करके चौथी सीढ़ी पर पैर रखता है, हिम्मत नहीं हारता है और पांचवी सीढ़ी पर पैर रखता है, और जैसे ही पांचवी सीढ़ी पर पैर रखता है सीधा ऊपर पहुंच जाता है, वो जो किला होता है वहां पर, क्योंकि राजा ने ऐसी योजना की थी, पहली दूसरी तीसरी, जो भी चौथी सीढ़ी पार करेगा, जैसे ही पांचवी सीढ़ी पर आएगा, एक चुंबकीय व्यवस्था है वहां पर, उस चुंबक के आधार से सीधा खींचा चला जाएगा ऊपर। परंतु ये वो होगा, उसके साथ होगा जो चौथी तक जाने का जिसने पुरुषार्थ किया है, बाकी नहीं। पुरुषार्थ बहुत कठिन है, परंतु थोड़ा आगे चलने के बाद वो पुरुषार्थ सहज हो जाता है, सीधा खींचकर चला गया और ऊपर पहुंच गया और वो जीत गया। ईश्वरीय मर्यादाएं भी ऐसा ही कवच है जो कि बहुत भारी है, बहुत कठिन है, पहनो तो चलना मुश्किल, और बामुश्किल एक कदम, दो कदम, तीन कदम और हार जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। यह हमसे नहीं होगा, क्योंकि चढ़ना 500 सीढ़ियां कौन चढ़ेगा, यहां तो एक चढ़ने में ही हालत खराब हो गई है। पर गुप्त रहस्य क्या है? चार सीढ़ियां चढ़ जाओ तो पांचवी सीढ़ी में चुंबक लगा हुआ है जो कि हमको खींच कर ले जाएगा, ज्ञान योग धारणा सेवा। चार, त्याग तपस्या सन्यास वैराग। चार, सत्संग शुद्ध अन्न। तीसरा स्तंभ राजयोग का सत्संग शुद्ध अन्न ब्रह्मचर्य, और चौथा स्तंभ कोर्स में सिखाते हो ना सबको, क्या सिखाते हो? दिव्य गुणों की धारणा। राजयोग के चार स्तंभ है ना, राजयोगी बैठा हुआ है, चार स्तंभ दिखाए हैं कोर्स की किताब में। तो मर्यादाएं कवच है, सेफ्टी का साधन है। मर्यादाओं के अंदर रहो तो सुरक्षित, मर्यादाओं के बाहर गए तो खतरा है। रेखा के बाहर जाते ही रावण खड़ा है अपना पुष्पक विमान लेकर। किस किस को जाना है रावण के साथ सैर करने? रावण अपनी लंका ले जाएगा सैर कराने, फिर बैठना वहां पर आंसू बहाते, राम जी आ जाओ, कम से कम हनुमान को तो भेजो। कोई शक्तिशाली संदेशवाहक तो आ जाए, क्योंकि हम तो शोक वाटिका में बैठे। और नहीं आया तो दुखी। तो मर्यादाएं जीवन का श्रृंगार है। सेफ्टी का साधन है, सुरक्षा का कवच है। दुर्ग है फोर्ट। जब तक इन मर्यादाओं के अंदर हम हैं, कोई आक्रमण नहीं होगा। मर्यादाओं के लकीर के बाहर, मर्यादाओं के किले के बाहर जाओ, शत्रु ताक पर बैठा है, घायल समाप्त। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी ऐसी कुछ मर्यादाएं हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। और मर्यादाएं ऐसी चीज है कि बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। एक बार पता चल गई, एक बार सुन लिया, इससे काम नहीं होगा, हर दिन, क्योंकि सूक्ष्म मर्यादाओं का उल्लंघन होते रहता है, इसके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आज के इस सत्र में हम ब्राह्मण जीवन की 26 मर्यादाओं की चर्चा करेंगे, और वो सारी मर्यादाएं कैसे जीवन में आ जाए, क्योंकि इन सभी मर्यादाओं में से एक भी आ जाए तो बाकी अपने आप आएगी। एक एक मर्यादा इतनी शक्तिशाली है। तो सबसे पहली मर्यादा ब्राह्मण जीवन की अमृत वेला। जिनका रोज ही अमृत वेला मिस हो जाता है, जिनका रोज ही अमृत वेला उठते हैं पर नींद में जाता है, जिनका रोज ही अमृत वेला साधारण जाता है, जिनका रोज अमृत वेला उठते हैं नींद नहीं आती है, बैठते हैं पर अनुभव कुछ नहीं होता है, जो रोज अमृत वेला तो करते हैं परंतु नाम मात्र, जो रोज उठते हैं अमृत वेला पर बाबा से किसी संबंध का अनुभव नहीं होता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है, अमृत वेला बैठते तो है परंतु उदास अंदर से, अगर ये स्थिति है, ये दशा है, तो जरूर कुछ ना कुछ ग अर्थात गड़बड़ हो रही है। सारे दिन भर अगर श्रीमत का सूक्ष्म उल्लंघन हुआ तो माया शाप देगी, और माया का शाप है अमृत वेला सो जाओ। रात में सोते समय श्रीमत का उल्लंघन किया, वो चीजें देख रहे हैं टीवी पर मोबाइल पर जो देखनी ही नहीं है, जिसकी वर्जना है टैबू। जो हराम है और ये सोच रहे हैं कि कल सुबह अच्छा अमृत वेला हो जाएगा, धोखा है स्वयं के साथ। लेट सो रहे हैं और लेट सोने का कारण ज्ञान योग और सेवा के अतिरिक्त कुछ और है, और ये सोच रहे हैं कि अमृत वेला बहुत अच्छा हो जाए। आत्म प्रवंचना है, सेल्फ डिसेप्शन, खुद को ही धोखा दे रहे हैं। जैसे सुबह भी कहा था, ब्राह्मण जीवन का आधार स्तंभ अमृत वेला है। अमृत वेला ही ठीक नहीं, सारी दिनचर्या कहां से ठीक होगी। बाबा ने कहा है कि अमृत वेला गाड़ी को पटरी पर डाल दो, सारे दिन भर अपने आप चलेगी। कहां कहां किसके साथ क्या बात करना है कैसे सोचेंगे, अमृत वेला ठीक कर दो, अपने आप पता चलेगा कहां क्या करना है, कहां क्या बात करनी है। जीसस क्राइस्ट के शिष्य उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमको ये नहीं पता, आप कहते हो जाओ भाषण दो, अब आपका संदेश सुनाओ, यहां तो लोग विरोधी है हमारे, हमें बोलना नहीं आता, हम क्या बोलेंगे, हम क्या कहेंगे, उनके सामने जाकर कैसे आपका संदेश देंगे, लोग तो आपकी जान के पीछे। वो कहता है जाओ सभी के बीच में खड़े हो जाओ, इट शैल बी गिवन अन टू यू एट दैट आवर व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक। तुम केवल जाकर खड़े हो जाओ, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है तुम्हें उस समय दिया जाएगा अपने आप होगा, वो सोच के नहीं होगा, अपने आप होगा। उसी तरह अमृत वेले को सशक्त बना देना, शक्तिशाली बना देना, पावरफुल बना देना, ऐसा बना देना कि अमृत वेला करने के बाद लगे कि किसी नई आत्मा ने प्रवेश कर लिया है, जैसे पावरफुल। अगर साधारण बीत रहा है, कभी हां कभी ना, कभी बहुत अच्छा कभी बिल्कुल डल, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है दिन भर। और पहले भी कहा था, अच्छा अमृत वेला करने की विधि जल्दी उठना नहीं है, जल्दी सोना। जल्दी सो जाओ तो अपने आप जल्दी आंख खुलेगी। लेट सो रहे हैं, रोज 11 बज रहे हैं, रोज 11:30 बज रहे हैं, रोज 12 बज रहे हैं। लेट सोना, लेट भोजन करना, गरिष्ठ भोजन करना, तो कहां से उठेंगे। योग के लिए दो चीजें खाली चाहिए, एक बुद्धि और दूसरा पेट। दोनों व्यर्थ से भरा होगा तो नींद आएगी, उबासी आएगी। इसके लिए अगले एक मास ये लक्ष्य रखो। मम्मा का मास चल रहा है, चाहे कितना भी कभी कभी लेट हो जाए सेवा के लिए, मम्मा आपका अपना जो नियम था 2 बजे का, उसको कभी नहीं छोड़ा। किसी ने मम्मा को कहा, कोई मिनिस्टर मिलने आ गया, रात को 11:30 बज गए, उसके बाद भी मम्मा 2 बजे उठ गई। किसी ने पूछा, मम्मा इतनी लेट हो गई रात को सोने के लिए, आप थोड़ा सा लेट उठते तो क्या फर्क पड़ता। मम्मा ने कहा, पहले ही मैं एक श्रीमत तो तोड़ चुकी हूं लेट सोने के, तो क्या दूसरी भी श्रीमत तोड़ू लेट उठने की। और जो रोज दोनों ही श्रीमत तोड़ते हैं उनके ऊपर बोझ है और सारे दिन भर भारीपन है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उठ तो रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, परंतु धंधे धोरी का चिंतन चल रहा है, इसको पैसे उसको पैसे, इसने कल ये कहा उसने कल वो कहा, उसको देखती हो अब, ये सब चल रहा है। यूनिलैटरल टॉक, केवल सुनाए रहे, वो भी ठीक है, बाबा को सुना रहे वो भी ठीक ही है, पर केवल सुनाया जा रहा है, बस सूचना है, योग नहीं है। तो सबसे पहली मर्यादा है अमृत वेला, उसके लिए जल्दी सोना है, सोने की विधि ठीक हो, खाली करके सोना है, स्वयं को बाप की गोद में सोना है, शरीर रूपी गाड़ी को गैराज में डाल दो और आत्मा ऊपर चली जाए अपने घर परमधाम सोने के लिए। जल्दी उठना, उठकर अगर नींद, सबसे अच्छा नियम है कि स्नान करके फिर अमृत वेला करना, ब्रश करके अमृत वेला करना, ये जो दांत है और वो जो ब्रश, इधर स्टिमुलस होगा सारा ब्रेन, शरीर के जो भी पोर्स छेद है स्नान से सभी खुलेंगे। फिर भी नींद आती है, थोड़ा सा व्यायाम प्राणायाम अनुलोम विलोम और भी कुछ, फिर भी नींद आती है थोड़ी एक्सरसाइज, फिर भी नींद आती है बैठ के करने से तो चलते फिरते करो, फिर भी नींद आती है अलग अलग स्थान पर करो, कभी छत पर, कभी बगीचे में, आंगन में, पर करना जरूर है। और सोना नहीं है, बस आंखें बंद और अमृत वेला चालू है, ऐसा अमृत वेला नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारा आंखें बंद करके अच्छा होता है, परंतु आंखें बंद करना यह सिग्नल है, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो आंखें बंद करते हैं, क्यों आंखें चालू नहीं रखते, क्योंकि वो सिग्नल है कि अभी नींद आने वाली है। उसी तरह आंखें बंद करके भी किया जा सकता है, परंतु वो सिग्नल ब्रेन रिसीव करता है कि अभी सोने का समय आ गया है, इसलिए फिर नींद आती है। नींद ना आने का, अमृत वेला नींद आने का एक कारण यह भी है कि नींद पर्याप्त नहीं हो रही है, कम नींद हो रही है, रोज लेट हो रहा है सेवा की वजह से, और फिर जल्दी भी उठना है, ये ज्यादा समय नहीं चलेगा, थोड़े समय के बाद फिर शारीरिक बीमारियां चालू हो जाएगी। या फिर नींद हो रही है परंतु वो नींद फ्रेश नहीं है। इसलिए नींद करने की एक विधि है जिसका नाम है योग निद्रा। सुना है ये शब्द? इस पर एक क्लास भी कभी पांडव भवन में हुई थी, आर्ट ऑफ योग निद्रा। हर एक को इसको सीखना है, विदेश में इस पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। 8 स्टेप्स है उसकी सोने की। बाहर के लोग इसको ज्यादा करते हैं, कुछ कुछ संस्थाएं, कुछ कुछ योगी हैं जो सभाओं में योग निद्रा कराते हैं। एक एक घंटे की कॉमेंट्रीज उसकी अवेलेबल है अलग से, पर वो बहुत जरूरी है। उसमें फर्स्ट स्टेप है लेट जाना, शवासन, और पूरे शरीर को शिथिल कर देना, पहला। दूसरा, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना को पूरे शरीर में घुमाना, पैर का अंगूठा देखना, उंगलियां देखना, शांत शिथिल, पिंडली, घुटना, जांग, पीठ, पाव, हाथ, सब कुछ शांत। तीसरा, उसमें बताया जाता है श्वासों की तरफ ध्यान देना, आ रही है जा रही है, शांत करते जाना, शांत करते जाना और शांत करते जाना। उसमें कुछ और स्टेप्स है, हम आपको थोड़ा सा ज्ञान रिलेटेड चीजें बता रहे हैं। चौथा, मन में श्रेष्ठ स्वमान लेना, जैसे मैं आत्मा बाबा की गोद में सो रही हूं। पांचवा, विजुलाइज करना, उसको देखना, यह सोने की विधि है, नहीं तो लोग ऐसा सोते हैं, इधर से सोते उधर से उठते, पैर इधर पांव उधर, आड़ा टेढ़ा हो जाते, रो रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस की जगह रोटेशन ऑफ बॉडी हो जाती है, चेतना नहीं घूमती, शरीर घूमता इधर से उधर। हम सोते हुए कोई देखे तो लगे योगी सो रहा है। सोमान, अगला उसको देखना, विजुलाइज करना उसको मन की आंखों से। कोई भी सोमान ले लिया सोते समय, मैं जैसे आज सुबह की साकार मुरली व्यक्तवाणी उसी में से उठाएंगे। माताओं के लिए बाबा ने कहा मैं जगत माता हूं, इसको सोचते सोचते, क्योंकि रात को सोते समय जो अंतिम संकल्प है उठते समय वो पहला संकल्प हो जाएगा। उसमें 8 स्टेप्स बताई है, 5वीं स्टेप्स में हम रुक जाए और इसी संकल्प करते करते विजुलाइज करते करते सो जाना है, क्योंकि ये संकल्प सीधा अंदर जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में। दो समय है जब माइंड हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव रिसेप्टिव रहता है, एक सुबह उठते समय और रात को सोते समय। मन के दो भाग है, चेतन मन अवचेतन मन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, मेल फीमेल, बाह्य मन अंतर मन, इनसाइड एक्सटर्नल इंटरनल। बीच में जैसे एक पार्टीशन है, सुबह का समय उठते ही ये पार्टीशन जैसे खुला हुआ है, यहां से जो बातें उधर डालेंगे सीधी चली जाएगी। रात को सोते समय ये पार्टीशन थोड़ा खुलता है, जो बातें डालेंगे सीधा सबकॉन्शियस माइंड में एकदम गहरे में चली जाएगी। सोते सोते संकल्प कर रहे हो कि मैं जगत माता हूं, सोते सोते देख रहे हो कि मैं सारे जगत की पालना करने वाली मां हूं। मां बहुत ऊंची बात है, मां अर्थात मां की परिभाषा ये नहीं शरीर से शरीरों को उत्पन्न कर देना, ये तो कोई भी करता है। मातृत्व बहुत ऊंची बात है, एक है मदर एक है मदरहुड। मां बनना तो बहुत आसान, मदरहुड को प्राप्त करना बहुत ऊंची बात है। मदरहुड अर्थात जगत माता, किसी एक या दो की मां नहीं, सारे विश्व की मां। शास्त्रों में वर्णन है, उपनिषदों में कन्या को वरदान दिया जाता है कि उसको 10 पुत्र हो और 11वां तुम्हारा पति, 11वां कौन है पुत्र, अपने पति को ही पुत्र बना लो, ऐसा वर्णन है, क्योंकि तब तक वो जगत माता है। वो बातें अलग, हम बात कर रहे हैं बाबा ने जो सम्मान दिया है, मैं जगत माता हूं सारे विश्व की पालना कर रही हूं, सारे विश्व की जो भी आत्मा है सब मेरी संतान है। और मां का प्यार होता है अपनी संतान से, संतान कैसा भी हो, कुपुत्र क्यों ना हो, फिर भी प्यार होता है। मैं जगत माता हूं, मुझे जगत की पालना करनी है। तो सोते सोते संकल्प करते करते विजुलाइज करते करते सो जाना, तो वह संकल्प धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और रोज नए नए संकल्प के साथ करना है और बहुत शांति से करना है इसको। वहां योग निद्रा की कुछ अलग विधियां और बताई जाती है, वो कहते हैं कि 15 मिनट लेट जाओ 2 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, अगर वो सारी 8 स्टेप कर लो तो। उसको कहते हैं पावर नैप, स्लीप कैप्सूल। हमें उस अर्थों से नहीं करना है, आध्यात्मिक अर्थों से करना है। तो योग निद्रा, नए नए संकल्प, तो ये रात को सोने की विधि होगी, तो अमृत वेला अपने आप आंख खुलेगी, अपने आप शक्तिशाली होगा, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि उसकी तैयारी रात से चालू कर दी है। ये पहला नियम, पहली मर्यादा। दूसरी मर्यादा ब्रह्मचर्य, दूसरी मर्यादा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा समान आचरण, ब्रह्माचर्य, वो चर्या जो आत्मा की ब्रह्मांड में है, परमधाम में है, ब्राह्मी स्थिति का अनुभव करना अर्थात ब्रह्मचर्य। जो आत्मा परमधाम में निराकारी वतन में अनुभव करती है, उस स्थिति का अनुभव इस शरीर में करना अर्थात ब्रह्मचर्य में स्थित होना। सभी इंद्रियों को वश में करना अर्थात ब्रह्मचर्य। कामा जीत बनना, काम विकार को संपूर्ण जीत लेना अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा समान आचरण, ब्रह्माचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य। संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य। कितनी परिभाषाएं हैं ब्रह्मचर्य की। और भगवान इस संसार में केवल एक ही काम के लिए आया है, पतित को पावन बनाना। बस सबसे ज्यादा आत्मा जो गिरी है, सबसे ज्यादा आत्मा ने पाप काम विकार के द्वारा किया है। ऐसी हमारी पवित्रता हो। रामायण में वर्णन है, हनुमान जी सागर लान कर लंका पहुंचते हैं, सीता से मिलते हैं, सीता रो रही है, दुख देखा नहीं जाता सीता का। वो सारी राक्षसिनियां उसको तंग करती है, हैरान करती है। रावण बीच बीच में आके धमकाता है। हनुमान जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सीता रो रही है, रो रही है, रो रही है। वो प्रकट होता है, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दि लांज गए अचरज नाई। मुद्रिका दे दी, पहचान लिया, वार्तालाप हुई। सीता कहती है, मुझे अब कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कब तक? क्या राम को पता भी है मैं यहां हूं? क्या वो मेरी पीड़ा को जानते हैं? हनुमान जी कहते हैं, आप कहो तो मैं अभी के अभी आपको ले जाता हूं यहां से। मुझे रोकने वाला यहां कोई नहीं है, मेरी शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। आप मेरे कंधों पर बैठो, मैं अभी आपको ले जाता हूं। सीता कहती है, मैं आ तो सकती हूं, परंतु पर पुरुष के स्पर्श मैं नहीं कर सकती। एक बार करना पड़ा, वो जबरदस्ती था, अब नहीं कर सकती। नहीं तो मैं तुम्हारे कंधों पर बैठकर अभी जाती थी, पर मैं पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती। जिनका विवाह शिव साजन से हुआ है और जो शिव की अर्धांगिनियां है, कोई पुरुष उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। अनटच्ड, कोई देहधारी हमें स्पर्श ना करे। गीता में एक श्लोक है जिसका अर्थ है, जो भी सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है वो दुख का कारण बनता है। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडिसिव टू पेन। जो भी स्पर्श से सुख उत्पन्न होगा, अंततः वो दुख में परिणित होगा। ब्रह्मचर्य काम जीत से चालू होता है और संपूर्ण पवित्रता की यात्रा है। उस बीच में बहुत सारे मकाम हैं। तो बाबा ने कहा है, तुम्हारा आपस में एक ही संबंध है, सब भाई भाई। दुनिया वाले बोलते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी क्या करती है, भाई बहन बनाती है। गलत बोलते हैं, हम भाई भाई बनाते हैं। उससे भी आगे की स्टेप है हमारी थोड़ी, बहुत गलत बोलते हैं वो लोग। भाई बहन तो बहुत कम हो गया, हम सबको भाई भाई बना देते हैं। क्योंकि यही दृष्टि सेफ है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी दृष्टि हुई तो संबंध बन जाते हैं। ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत ही अच्छी है, वही बहन मुरली सुनानी चाहिए। साकार मुरलियों में वाक्य आते हैं, बाबा, बच्चे कहते हैं, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बाबा ये बहन बहुत अच्छी मुरली सुनाती है। बाप कहते हैं, बच्चे मीठी बहन नहीं, मीठी मुरली है। तुम्हें किसी के नाम रूप में फंसना नहीं है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, ये वैसा है, ये वैसा है। आसक्तियां, लगाओ, फैमिलियरिटी, बहुत बात करना, लंबा लंबा समय पर फोन पर बातें, मैसेजेस, कॉल्स, और अभी नया वीडियो कॉल। दादी जान की अपना अनुभव बताती है कि जो जब यज्ञ नया नया माउंट आबू आया 1950 के बाद, एक भाई आने लगा और दादी जान की उसको क्लोज कोर्स कराने लगी, और बहुत अच्छा भाई था। कोर्स पूरा हुआ, दादी बाबा के पास पहुंची और दादी ने बाबा से कहा, ब्रह्मा बाबा से, बाबा वो भाई जो है ना बहुत अच्छा है, एकदम पुरानी आत्मा है, देवकुल की आत्मा है, ब्राह्मण परिवार की है, बाबा बहुत ही अच्छी है, उसने इतना ध्यान से सुना, उसको ने एकदम तीर लग गया। बाबा ने कहा, तीर उसको लगा या तुमको? क्योंकि मन का स्वभाव है कोई साथी ढूंढता है, कोई देहधारी उसको चाहिए, कंधा चाहिए जिस पर रख के रोए, बुखार आए तो कोई यहां हाथ लगाए, आहा बड़ा अच्छा लगता है, कोई पूछे कुछ लाना है, कुछ बनाए, पोहा वगैरह कुछ करना है तो बोलो, वो पूछे फिर हम कहें नहीं 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 हमको नहीं चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर नहीं कहेगा नहीं 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 लो लो लो, हम कहेंगे ना 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 नहीं थोड़ा ले ही लो, अच्छा ठीक है लाओ, तो इसमें थोड़ी सी अच्छा लगता है इधर। वैसे तो कोई पूछता भी नहीं, इसलिए लोग बीमार भी पड़ते हैं, बीमार पड़ने के बड़े फायदे, लोग पूछने आते हैं। और कोई कोई ये भी बीमार है कि हम बीमार नहीं पड़ते, लोगों को देखो कितनी बीमारी होती है और हमको कोई भी बीमारी नहीं, हम भी तो कभी बीमार पड़ना चाहिए, हमको भी कभी सलाइन, छाती फूल जाती है, आह हा हा सलाइन की एक एक बूंद गिर रही है, हमको पूछने वाले इतने आ रहे हैं, वैसे कोई पूछता नहीं। अब ठीक है, हम कहेंगे हाँ अभी पहले से थोड़ा ठीक, अब दर्द कैसा है, अभी कम है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, इसको कहते हैं अटेंशन सीकिंग। हर 15 दिन में एक पेशेंट ऐसा आता है जिसके पास चार पांच लोग रहते हैं, स्ट्रेचर पर आता है बेहोश, जैसे कुछ सुंगा दो उठ के बैठ जाता है और वापस हिस्टेरिया, ढोंग, नाटक, मेरे तरफ ध्यान दे सभी। अस्पताल में हम देखते हैं हर मास में एक मरीज होता होगा, कुछ पी लेता है, खा लेता है, पॉइजनिंग, पर आजकल के पॉइजन सब डुप्लीकेट है, वो खाते ही इतना है हिसाब से, मरना नहीं चाहिए हिसाब से बराबर, तो सबको चिंता हो जाती है, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ब्रह्मचर्य अर्थात किसी से लगाव नहीं, किसी से झुकाव नहीं, सब आत्माएं और दैहिक स्मृतियों से ऊपर, संसार तो देह में डूबा हुआ है, शरीर ही सब कुछ है संसार के लिए, शरीर का सुख मिल जाए तो आहा हा हा, बस सारी सृष्टि संसार की देह के बीच घूमती है, सारे फिल्में वहां घूम रही है, सारे उपन्यास घूम रहे, सारा मीडिया घूम रहा है, सारी किताबें वहीं घूम रही है, शरीर, शरीर का सुख, उनको उस सुख का अनुभव ही नहीं है जो शरीर से परे है, जो अतींद्रिय है, जिसको आत्मा ने कभी टेस्ट किया था। तो ब्रह्मचर्य की धारणा को फिर से मजबूत करना है, ऐसे कोई हमारे संबंध ना हो जो अनैतिक है, हमारे कोई ऐसे संबंध ना हो ऑब्जेक्शनेबल है, ऐसे कोई संबंध ना हो जो संदेहास्पद है, सस्पिशियस, ऐसा कोई संबंध ना हो जहां छुप छुप के बात करना पड़े, छुप छुप के मिलना पड़े। गुह्य भाष्य, एकांत में मिलना पड़े, क्या आवश्यकता है? धीरे धीरे ये सारा शरीर की ओर आकर्षित करेगा और एक दिन आत्मा यहां से बाहर। इस यज्ञ में शुरुआत से अब तक जितनी बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, जो भी इस यज्ञ को छोड़कर गए हैं, एक ही कारण रहा है, अपवित्रता। ऊपर से कारण दूसरे दूसरे, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, ऊपर ऊपर से कारण बनाए, मुझे घर जाना है, मां को देखना है, ये करना है, वो करना है, पर मुख्य कारण एक ही। बाइबल में वाक्य है, ही दैट लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, ही दैट लवेथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने लौकिक मां बाप को मेरे से अधिक प्यार करता है, मेरे लायक ही नहीं है, जाओ। जो अपने लौकिक भाई और बहन को मेरे से अधिक प्रेम करता है, वो मेरे लायक नहीं है। इसमें आसक्ति, उसमें आसक्ति, इसमें लगाओ, उसमें लगाओ, इसको फोन, उसको फोन, इसमें इन्वॉल्वमेंट, उसमें इन्वॉल्वमेंट, इसमें डूबे, उसमें डूबे, इसमें फंसे, उसमें फंसे, ऐसी आत्मा अध्यात्म के मार्ग पे नहीं चल सकती। ये बंधन है सारे। तो दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा, तीसरी मर्यादा सेंटर, एटमॉस्फियर, सेंटर का वायुमंडल। ये जो सेवा केंद्र है, इसका वायुमंडल शक्तिशाली बनाने की जिम्मेवारी मेरी है, मेरा फर्ज है। अगर यहां कोई आता है और यहां बिजनेस की बातें करता है, यहां कोई आता है यहां सांसारिक बातें करता है, यहां कोई आता है पॉलिटिक्स की चर्चा यहां बैठ के करता है, तो एटमॉस्फियर कैसा हो रहा है? यहां का वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है या दूषित हो रहा है? तीन चार दिन पहले मुरली थी, यहां आकर कोई बैठता है और व्यर्थ संकल्प चलाता है तो अपना भी नुकसान करता है, दूसरों का भी नुकसान करता है और दूसरों के लिए और विघ्न उत्पन्न करता है। अभी चार पांच दिन पहले साकार मुरली थी, जो यहां आता है, योग में बैठता है और व्यर्थ संकल्प चलते है, नुकसान कर रहा है। तो ऐसा कोई काम यहां नहीं करना है। ये मत भूलना, ये इंद्र सभा है, ये धर्मराजपुरी है। अगर करना ही है तो आउट, यहां से बाहर जाओ, और जो करना है बाहर करो, यहां नहीं। और जैसा ये वैसा ही मधुबन। तो लक्ष्य रखना है मुझे सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है। ऐसी कोई चर्चा यहां नहीं करनी है, परचिंतन, दो माताएं बैठकर तीसरी माता के बारे में परचिंतन, दो भाई बैठकर, दो बहनें बैठकर, एक भाई एक बहन बैठकर निमित्त आत्माओं के लिए परचिंतन। ये ऐसा ही करती है, ये वैसा ही करती है, इसने ये किया, उसने वो किया, या इंटरफियर करना एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बहन कहां है, वो भाई कहां है, वो इधर था अब उधर क्यों गया, व्यर्थ की बातें। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखना है। यहां किस लिए आते हो? मुरली सुनने? बस व्यर्थ की बातें यहां नहीं करनी। तो सेंटर, एटमॉस्फियर को दूषित ना करना, यह मर्यादा है। उसके बाद है चौथा, ड्रेस, ड्रेस कोड। कम से कम क्लास में आते समय, मुरली में आते समय, भट्टी में आते समय कौन सा कपड़ा हो? व्हाइट बैच, ये मर्यादा है। बाहर भले जो पहनना है पहनो, परंतु यहां जब सेवा केंद्र में आ रहे तब कम से कम यूनिफॉर्म। हम रूहानी मिलिट्री है, ये हमारा ड्रेस है, ये हमारा कोड है। इस्लाम धर्म में ड्रेस के लिए पांच बातें कही है, विशेषतः बहनों की ड्रेस के लिए, और वही भाइयों के लिए भी कहीं कहीं लागू होती है। इस्लाम धर्म में बहुत स्ट्रिक्ट है हिजाब, पर्दा। सबसे पहली, ड्रेस टाइट न हो, यह पहली बात। दूसरा, ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शी ना हो। हम किसी की ओर आकर्षित नहीं, पर दूसरा हमारी देह की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तीसरा, पुरुषों के जैसे ना हो। चौथा, जगमग भड़काऊ रंग फैशनेबल ना हो। और पांचवा, चेहरा और पैर और हाथ इतना ही खुला हो। संसार के धर्म भी देखो कितने नियम बना के रखे, और जब जब उन्हीं धर्मों में उन्हीं नियमों का उल्लंघन हुआ तो संसार में क्या हुआ, कितने अपराध और क्या क्या संसार में हो रहा है। क्यों, किस तरह के ड्रेस पहने जाते हैं। हमारा ड्रेस कोड सिंपल हो, स्वच्छ हो, शरीर जिससे ढका हुआ हो ऐसा हो, हमारी तरफ कोई आकर्षित ना हो जाए। उस दिन भी कहा था, विनोबा भावे ट्रेन से गुजर रहे थे, एक बहन को देखा जो बैठी थी जिसने गजरा लगा के रखा था। वो उस बहन, गजरा पता है ना, वो उस बहन से पूछते, ये गजरा तुमको दिखता है क्या? उसने कहा, नहीं, तो किस लिए लगाया है ये गजरा, तुमको दिखता है क्या? नहीं दिखता, तो किस लिए लगाया है? ड्रेस स्वच्छ हो, कवर्ड हो, जितना हो सके लाइट कलर हो, और बैच हो। ये बैच सुरक्षा कवच है, किसकी बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी। कई लोगों के कितने अनुभव है बैच के, मैच को देखा और सुरक्षा हो गई। कई लोग एकदम छोटा बैच पहनते हैं, बटन वाला यहां, ताकि दिखे ना, और कोई पूछे बैच कहां है तो ये क्या है, दोनों तरफ से हां और ना, एकदम छोटा सा, दिखना भी नहीं चाहिए। अगर कोई पूछ ले कोई ब्राह्मण, तो ये क्या है, बाबा ने ऐसा थोड़ी ना बोला है, बड़ा जगाओ, बैच बैच है, ये है बस, दोनों तरफ से दिखना चाहिए, दुनिया को पता रहना चाहिए हम कौन है, ये निशानी है हमारी। डरना नहीं है बैच पहनने से। तो ड्रेस कोड तीसरा, चौथा, उसके बाद में अगला इकोनॉमी, यज्ञ की मर्यादा नियम है इकोनॉमी। किस चीज की इकोनॉमी? बिजली। किस चीज की इकोनॉमी? पानी। किस चीज की इकोनॉमी? भोजन। ब्रह्मा भोजन बना हुआ है, हमको पता नहीं कौन सी चीज है, सब डाल दी थाली में, और बाद में पता चला ये हम नहीं खा सकते, झूठा छोड़ दिया। मधुबन में देखते कितना झूठा छोड़ते, बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया, यज्ञ का भोजन क्या है? दुख भंजक भोजन है। 18 फरवरी 1988 अव्यक्तवाणी, ये दुख भंजक भोजन है, इसमें दुआ है और दवा है। यज्ञ का एक एक कणा मोहर के समान है, और भोजन वेस्ट। मधुबन में ग्लास भर के चाय लेते, आधा पीते और छोड़ देते कहीं पर भी, वेस्ट। बोझ है। मधुबन में जाते हैं कमरों में सब कुछ ऑन और बाहर बहुत कुछ कुछ करते हैं, चाबी लगाते हैं, लॉक लगाते और लॉक लेके घर, चाबी लेके घर, बाद में वहां कमरा तोड़ना पड़ता है, हर मास में शांतिवन में करना पड़ता है। माताएं आती है और चाबी अपना लगा के चली जाती है, चाबी लेके घर, नीचे देना है देती नहीं है, कितने लॉक तोड़ने पड़ते हैं, नुकसान। मधुबन में जाते हैं कमरे में गंदगी गंदगी, जाते समय कमरा वैसा ही छोड़ के जाना है जैसे प्रवेश किया था। उस बेडशीट पे एक सिलवट भी ना हो, गंदगी नहीं करनी है। इकोनॉमी, पैसे, पैसे वेस्ट, शॉपिंग करने जा रहे बुद्धि में कुछ नहीं है, जो दिखा वो खरीदना। और अभी दूसरा है ऑनलाइन शॉपिंग, सर्फ करते रहते दिन भर, क्या खरीदू क्या खरीदू क्या खरीदू, बाएं अपने आप आ जाता है, खाली बटन दबाने की देरी है। जो पुरानी चीजें खरीदी है अभी तक खोल के भी नहीं देखी है। एक भाई है योग ज्ञान में चलते हैं, वो बता रहे थे हमारी युगल इतनी शॉपिंग करती है ऑनलाइन कि एक साड़ी अभी खरीदी, अभी उसको खोला भी नहीं कि दूसरी खरीद ली, बस शॉपिंग ही करती रहती है मोबाइल पर बैठकर। एडिक्शन हो गया है, लत। इकोनॉमी, पेट्रोल डीजल, जहां पैदल जा सकते हैं पैदल जाना है। यह समझना हमारे घर की एक एक वस्तु यज्ञ की वस्तु है, यह समझना कि मेरी पालना यज्ञ से हो रही है, यह नहीं ये सेंटर अलग मैं अलग, घर भी यज्ञ ही है। चौथी पांचवी मर्यादा क्या है? इकोनॉमी। और सबसे सूक्ष्म इकोनॉमी है संकल्पों की इकोनॉमी। व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, वेस्ट। दावा ने कहा संकल्पों का बर्थ कंट्रोल करो, जो भी फिजूल खर्चा हो रहा है घर में स्टॉप करना है सबसे पहले। उसके बाद एफ, एफ अर्थात फूड, भोजन। भोजन के बहुत सारे नियम हैं। चौका, रसोई, रसोई को चौका कहा जाता है। चौका अर्थात चार बातें, चौका कहते हैं ना। भोजन जो पहले जमाने में भोजन बनाते थे उनको क्या कहा जाता था? महाराज, महाराज, महाराज अर्थात उनका जो कपड़े होते थे उसमें सिलाई नहीं होती थी, और जहां वो भोजन बनाते थे वहां किसी को भी प्रवेश नहीं रहता था। वो जो महाराज रहते थे घर में बुलाए थे, शादी के लिए बुलाते थे, उनका अपना अलग कमरा रहता था। महाराज अर्थात जिसका इंद्रियों पर संयम है। तो भोजन में चार नियम है, चौका, रसोई। पहला, पैसे कहां से आ रहे? किसी का शोषण करके, ब्लैक मनी, करप्शन करके, भ्रष्टाचार से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? बहुत सारे पैसे कमाओ और यज्ञ में दो, ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता है, वो भी डर से इनकम टैक्स के। किसी को धोखा दिया और पैसे कमाए, ऐसे पैसे से जो भोजन बन रहा है कभी शक्तिशाली नहीं होगा। पहला चौका में, पहला भोजन किस पैसे से आ रहा है। दूसरा अन्न दोष, भोजन में स्थूल दोष तो नहीं है, बाल, कंकड़, पत्थर, ये दोष। तीसरा बनाने वाले के मन की स्थिति, बनाने वाला किस मनस्थिति में भोजन बना रहा है, ये तीसरा। और चौथा खाने वाला किस मनस्थिति में वो खा रहा है, कंप्लेंट के साथ खा रहा है, क्रोध के साथ खा रहा है, फटाफट खा रहा है, कैसे खा रहा है, या धन्यवाद देकर खा रहा है। चारों बातें आनी चाहिए। भोजन के और चार नियम हैं। सबसे पहला हंगरलेस ईटिंग, भूख है नहीं फिर भी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बहुत सारा खा रहे। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको भूख नहीं लगती फिर भी खाता है। शेर को भूख नहीं लगी ना, शांति से बैठा रहेगा। नियम है कि जब भूख ना हो कम कुछ खा लिया जाए, सूप कोई फ्रूट। दूसरा है ओवर ईटिंग, बहुत खाना बहुत खाना, इतना टेस्टी बना है। हमने एक बात तो मधु पहली बार ही सुनी मधुबन में, जो आज तक कभी नहीं सुनी थी, दोपहर में ब्रह्मा भोजन है, नाश्ता नहीं करना है क्योंकि ज्यादा खाएंगे ना फिर। अरे वो बनने वाला है, पाव भाजी बनने वाली है दोपहर में, नाश्ता नहीं करेंगे हम आज, क्योंकि नाश्ता कर लिया तो फिर क्या खाएंगे, ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग। उठते ही सबसे पहला फोन किचन में, आज क्या बना है, दिन रात भोजन का चिंतन। स्वामी विवेकानंद से पूछा था तुम्हारे देश के धर्म का क्या हुआ, भारत का, विदेश में पूछा, उन्होंने कहा था मेरे देश का धर्म चूल्हे चौके में जाके भस्म हो गया है। वेयर किचन इज टेम्पल एंड फूड इज गॉड, जहां किचन मंदिर है, रसोई और भोजन ही भगवान है, उसी की पूजा करते रहते हैं, दिन रात खाने में ही लगे हुए हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात सारा जीवन किचन में ही गुजार देना तो नहीं है ना। ओवर ईटिंग, खाते जाना खाते जाना खाते जाना खाते जाना खाते। आज तक किसी का पेट भरा है क्या द्वापर से? चौथा, तीसरा, फास्ट ईटिंग, जल्दी जल्दी खाना, क्रोध में खाना और दुखी होके खाना, ये वर्जना है। क्रोध में खाना अर्थात वो भोजन नॉनवेज बन जाता है, जल्दी जल्दी खाना। चौथा, रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, भोजन का प्रकार ही गलत है। तीन प्रकार के भोजन है, सतो रजो तमो। तमो अर्थात बासी, रजो अर्थात बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा मीठा। जब तक ऐसे ना करे तब तक मजा नहीं आता है। भोजन खाने के बाद आवाज आनी चाहिए, आप कुछ तो लाओ मीठा जल्दी। रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, सात्विक आहार जो सुपाच्य हो, जो कम हो, जो सात्विक हो, और जिसे खाकर ऊर्जा का अनुभव हो, जो उत्तेजना उत्पन्न ना करे। भोजन के और तीन नियम हैं। पहला, एक्साइटमेंट क्रिएट ना करे, इंद्रियों को उत्तेजित ना करे भोजन। दूसरा, आलस और प्रमाद ना लाए। और तीसरा, स्वास्थ्यवर्धक हो, जिससे शरीर हेल्दी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, जो भी भोजन खाओ उसको क्या करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, पत्र पुष्प या फल कुछ भी खाओ पहले मुझे अर्पण करो। तो यहां कितनी ऐसी माता है जो रोज भोग लगाती है, हाथ खड़ा करेंगे, और जो नहीं उठा रहे उनका क्या, भगवान को भूखा रोज, भगवान कंप्लेंट करेगा कि तुमने मुझे भोजन नहीं खिलाया आज। नटखट तेरा लाल, यशोदा नटखट तेरा लाल, घर में नहीं आएगा, वो भाग जाएगा, बड़ा नटखट है। 24 घंटे में एक बार भोग लगाना है विधिवत। और भोग लगाना अर्थात ये नहीं 56 प्रकार के भोग, साकार महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, बाप साहूकारों की महफिल में नहीं आते जहां 56 प्रकार के भोग बन रहे, बाप गरीबों की महफिल में आते हैं जहां सूखी रोटी बन रही है। तो प्रेम से इसे स्वीकार करना है, प्रभु परमात्मा प्रेम का भूखा है, भावना का भूखा है, प्रेम का प्यासा है, उसे वो दो उसे वो चाहिए, जो भी बन रहा है उसे दे दो, पत्रम पुष्पम फलम ये मांगता है वो, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा, केवल प्रेम से स्वीकार करो। उसके बाद जी, जी अर्थात गिव, देना, क्या क्या देना, खुशी देना, शुभ भावनाएं देना, शुभकामनाएं देना और दुआएं देना सभी को, ये नियम है। उसके बाद एच, एच अर्थात होली कंपनी अर्थात सत्संग, ये ब्राह्मण परिवार सत्संग है। इस सत्संग से बाहर जाते ही कुसंग है, और जैसे ही कुसंग में गए गए उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। इसके लिए संगठन में आना बहुत जरूरी है। कोई लोग कहते हैं हम तो घर पे ही मुरली सुनते हैं, सेंटर जाने की जरूरत है, मोबाइल में सब कुछ आ जाता है। पर सेंटर में आना केवल मुरली सुनना लक्ष्य नहीं है, इस वायुमंडल के अंदर आ रहे हैं हम, एक घेराव है, एक वर्तुल है, इतनी आत्माओं की संगठित ऊर्जा यहां काम कर रही है। इस वायुमंडल में बैठकर यदि कोई शक्तिशाली संकल्प करे तो सबकी ऊर्जा उसमें क्यूमुलेटिव एनर्जी कंबाइंड हो जाएगी। रोज अमृत वेला नहीं हो रहा, यहां बैठ के संकल्प करो कि आज से करेंगे, कल से कुछ भी हो जाए संगठित ऊर्जा आएगी। इसके लिए जब भी संगठन होगा, जब भी सेवा केंद्र पर कोई प्रोग्राम होगा, सभी ब्राह्मणों को सहयोग की उंगली, सहयोग के नोट्स देने हैं। सत्संग। उसके बाद आय, आय अर्थात इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज, दिव्य गुणों की धारणा करना, ये मर्यादाएं हैं। 36 गुण है, रोज एक एक गुण ले लो और उन पर काम करना है। चार प्रकार की भट्टियां हैं यज्ञ में, एक ज्ञान भट्टी, योग भट्टी, धारणा भट्टी, सेवा भट्टी। सेवाओं की भट्टियां बहुत चल रही है, धारणा की भट्टी करनी है। एक गुण उठा लो, अनुशासन, आज मुझे अपने जीवन में अनुशासन लाना है कैसे भी करके। दूसरा एक गुण पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी, जैसे एक गांव है वहां पर चर्च है, वहां का एक पादरी है आज रिटायर हो रहा है, अंतिम दिवस है तो उसके स्वागत के लिए प्रोग्राम रखा गया है, और प्रोग्राम में उस शहर का जो मेयर है उसको इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट। तो उस मेयर को आने में थोड़ी देर हो जाती है, तो पादरी उठता है, कहता है मैं ही अपना भाषण चालू कर देता हूं। वो अपना भाषण चालू करता है, कहता है मुझे याद है 30-40 साल पहले जब पहली बार मैं इस शहर में आया था तो एक युवक मेरे पास आया था और क्रिश्चियन धर्म में कन्फेशन करते, सब पापों को कबूल करते, मैंने ये पाप किए और मुझे पश्चाताप करना है, उसको कहते कन्फेशन। तो मैं जब पहली बार यहां आया एक युवक मेरे पास आया था और उसने ऐसी बातें बताई, इतने पाप किए थे उसने, हर प्रकार का पाप उसने किया था, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे गांव में मैं आ गया, इतने पाप एक ही व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो मैंने पहली बार उसको सुना तो मुझे तो लगा मैं यहां रहूंगा नहीं, पर हां शुक्र है खुदा का कि उसके बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया, वो एक ही था पहला। भाषण चालू होता है और तब तक मेयर साहब आ जाते हैं, लेट हो गए आने में, और फिर मेयर साहब भाषण करना चालू करते हैं, कहते हैं हमारे चर्च में ये जो पादरी है इन्होंने बहुत सेवा की और मुझे याद है और इस बात का मुझे गर्व है कि मैं ही वो पहला व्यक्ति था जो इनके पास आया था, उसके पहले क्या हुआ उसे पता नहीं। लेट आना, इसकी चर्चा चल रही थी। तो दिव्य गुणों की भट्टी, गुणों को उठाना है, काम करना है, एक एक हफ्ता एक एक गुण पर काम। उसके बाद जे, हम एबीसीडी कर रहे हैं, ए से लेकर जेड तक मर्यादा है। ए फॉर अमृत वेला, बी फॉर ब्रह्मचर्य, सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, डी फॉर ड्रेस, ई फॉर इकोनॉमी, एफ फॉर फूड, जी गिविंग, एच होली कंपनी सत्संग, आई इनकल्केशन ऑफ वर्च्यू, जे जर्नी, जर्नी टू मधुबन, मधुबन की यात्रा। मधुबन जाते हैं वहां क्या नियम है, वहां जा किस लिए रहे, तपस्या करने, वहां के लोग हैं उनका इंस्पेक्शन करने नहीं जा रहे हो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है, तुमको क्या करना है, कहां वहां क्या हो रहा है, तुम अपने काम से काम रखो। वहां जा रहे तपस्या करने पर आधा समय शांतिवन के बाहर शॉपिंग में ही बीत रहा है, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, उदयपुर भी जाना है, वो कुंभलगढ़ भी जाना है, इधर भी थोड़ा घूम के आते हैं, अंबाजी भी घूम के आते हैं, वहां जा रहे हैं, इससे मिलना है, उससे मिलना है, इससे मिलना, उससे मिलना, मिलने मिलने में ही चले गए, बाबा के कमरे में भी कभी कभी कोई जाता नहीं, वहां जा किस लिए रहे, तपस्या करने, ये भूलना नहीं है। मधुबन के भी नियम, बाबा अभी तो बाबा का आना बंद है, पर बाबा जब आते थे हॉल में बैठे हुए क्या क्या कर रहे हैं, कोई अपना बाबा इधर भोग अभी लगा नहीं है, अपना भोजन इधर ही चालू हॉल में, सैंडविच फ्रूट्स, भगवान से पहले खुद ही को भोग, इधर बातें करना चालू है, कुछ करना चालू है। मधुबन में जाना अर्थात वो सारे दिन तपस्या के दिन समझना, मौन के दिन समझना, अधिक से अधिक बाबा से सामीप्य समीपता बढ़ जाए, अपनी चेकिंग करना पिछले 6 मास में क्या गलतियां की, कितने काम है, ये सब छोड़कर कुछ और ही कर रहे, कारोबारी कारोबार कर रहे, वो भी जरूरी है, परंतु लक्ष्य रहे तपस्या। यहां से जाते हैं वहां पर मधुबन में जाते हैं, आधा समय तो व्यर्थ में जाता है, बाबा को भी मिलते हैं, वर्तमान सेंटर पर आते सुनाते हमने बहुत अच्छा अनुभव किए, अनुभव इतना सस्ता नहीं है जो हर एक को मिल जाए। तो मधुबन के नियम, मधुबन निवासियों में क्या दोष है उसका चिंतन, ये लोग भी ऐसा करते हैं, हम भी करेंगे, उसके बाद में के अर्थात कीपिंग चार्ट, चार्ट रखना, रात में सोने से पहले मौखिक या लिखित बाबा को चार्ट देना, वर्बल और रिटन। एक मुरली में था, कमरे में आए थक गए और लेट गए, यह है अलबेलापन, बिना बाप को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट किए सोना नहीं है। एक आइस प्लांट था, बर्फ का प्लांट कंपनी, जहां बर्फ बनती थी, एक रात शाम ऐसा हुआ कि वहां कुछ खराबी आ गई और जो एक इंजीनियर था वहां का वो अंदर उस कमरे में चला गया, कोल्ड रूम था, और वहां काम करने लगा और लेट हो गया, और बाहर निकला तो देखा कि कंपनी बंद हो गई, सब लोग चले गए, अब रात भर उसे अकेला रखना है और वहां पे माइनस टेम्परेचर है, मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि सब लोगों को लगा कि हो गया काम, सब चले गए, लॉक हो गया, सब बंद, वो अकेला उस आइस प्लांट के अंदर, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, अब कोई मार्ग ही नहीं है, कहां चिल्लाऊं, किसको फोन करूं, कुछ नहीं है वहां पर, सब बंद है वहां पर वो कमरे में। और थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है और वो बाहर जाता है, तो वो व्यक्ति उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता मैं अंदर हूं, वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है इस कंपनी में 50 लोग काम करते हैं पर आप ही एक ऐसे हो जो मुझे जाते समय हाय करते हो और आते समय हाय करते हो और जाते समय बाय करते हो, और मुझे याद है आज सुबह आपने मुझे हाय किया था, हेलो किया था, और जब जाते समय मैंने देखा सब चले गए, आप अकेले नहीं गए, इसलिए मुझे शक हुआ, इसलिए मैं अंदर आया। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बचा दिया। जो बच्चे सुबह उस बाप को अमृत वेला गुड मॉर्निंग और रात को सोते समय गुड नाइट करेंगे, अगर एक दिन नहीं करेंगे तो बाप खुद आएगा ढूंढने, कहां गया, कहीं फंस तो नहीं गया आइस प्लांट में, माया का आइस प्लांट? योगक्षेमं वहाम्यहम् नमे भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। हे अर्जुन, उसका वहन मैं करूंगा जो मेरे प्रति समर्पित है। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ। वो कहते हैं, लोग तुम्हारे विरोधी है, वो हमको मारेंगे। वो कहता है, जाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा, यूअर वेरी हेयर इज नंबर्ड, तुम्हारे सिर पर जितने बाल है ना, एक एक गिन के है, एक भी कम नहीं होगा। यूअर वेरी हेयर इज नंबर्ड, मैं बैठा हूं, कुछ नहीं होगा। और जो ऐसे प्रभु प्रेमी है, भगवान उन्हें बहुत प्रेम करता है, अपने सारे नियम मर्यादाओं को तोड़ देता है। महाभारत में दिखाया है, वो अर्जुन हार रहा है, भीष्म जीत रहा है, कृष्ण क्या करता है, वो चक्का उठा लेता है, जबकि उसने प्रतिज्ञा की थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म क्या कहता है, हे गोविंद, मैंने शस्त्र डाल दिए, तुम हार गए। भगवान अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देता है। तुम बच्चों ने अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, बाप को अपने प्रेम की रस्सी से बांधा है, तो बताओ बांधने वाले बड़े हैं या बंधन में आने वाला बड़ा है? ऐसे बोलना नहीं, वो उसकी बड़ाई है। कीपिंग चार्ट, अपने दिल का समाचार उसको देना, ये हुआ, आंसू आए, विकार के संकल्प आए, सब कुछ बता देना, पारदर्शी, कुछ भी उससे ना छुपाना, जो है उसको बता देना। सच्चे दिल जो होते उसको बहुत प्रिय है, उसे बहुत अच्छे लगते वो जिनका हृदय साफ है। रामायण में दिखाया श्री राम जी उस वाटिका में जाते हैं, वहां से सीता, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, बड़ी प्राइवेट बात है। राम जी सीता को देख रहे, अभी शादी हुई नहीं है, वो उसको देख रहे, उसको देख रहे। श्री राम जी वापस आते हैं और अपने गुरु विश्वामित्र को सुना देते हैं, एक वो दिखी, मैं उसको देखते रहा, वो मुझे देखती रही। ऐसी बातें बताई नहीं जाती है, वास्तव में सीक्रेट बातें है। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, राम का स्वभाव कैसा है, सरल है, छुअत छल नाही, छल उसको छूता नहीं है। जो ऐसे है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो बहुत स्वच्छ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल छिद्र, छिद्र अर्थात दूसरों को दोष देखने वाले मुझे प्रिय नहीं है। Blessed are the pure in heart, for they shall see the kingdom of God. Jesus कहता है, धन्य भागी है वो जिसका हृदय स्वच्छ है, वो ही परमात्मा को देखेंगे, बाकी नहीं। तो स्वच्छता अर्थात चार्ट, जे के, उसके बाद में एल, एल अर्थात लव फॉर वन बाबा, एक बाप के अतिरिक्त और किसी से प्यार नहीं। दुनिया वालों से प्यार करना है झूठा, ऊपर ऊपर से हाथ घुमा देना बस, सौतेली मां की तरह। बाप से सच्चा प्यार और दुनिया वाले का, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ऐसे ऐसे हाथ घुमा देना थोड़ा पीठ पर, जैसे नर्स होती है हॉस्पिटल में, एक वार्ड में काम करती है जहां 50 बच्चे हैं, सबकी देखभाल करती है, पर उसका ध्यान कहां होता है, अपने बच्चे की तरफ जो घर में है। इसका मतलब ये नहीं वो पेशेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, सभी पेशेंट्स का ध्यान रखती है, पर उसका सारा ध्यान किधर है, अपना बच्चा जिसको बुखार है और जो घर में है। तो हमारा शिव बालक सारा ध्यान उधर। या भक्ति मार्ग में कहते परमात्मा प्रेम कैसा होना चाहिए, दांत के दर्द की तरह, दांत में दर्द किस किस को हुआ है? दांत में दर्द हुआ और दवाई न लो दर्द की, क्या होता है? दिन भर ध्यान उधर ही रहता है, बात कर रहे हैं ध्यान इधर, खा रहे हैं ध्यान उधर, सिलाई कर रहे हैं ध्यान उधर, भोजन बना रहे ध्यान इधर, सारा ध्यान दांत की तरफ। टूथिक, गॉड्स लव इज लाइक टूथिक, परमात्मा प्रेम दांत के दर्द की तरह होना चाहिए, निरंतर खींचता रहे खींचता रहे खींचता रहे खींचता रहे खींचता रहे। तो लव फॉर वन बाबा वन यज्ञ, उसके बाद में एम मुरली, जिसकी चर्चा हमने पहली क्लास में की, सा रे ग म प ध नी, मुरली चिंतन। उसके बाद में एन, एन अर्थात नो, एक लिस्ट बनानी है बाबा ने किस किस चीजें के लिए ना कही है, और अपनी डायरी में बड़े अक्षरों में लिख देना है बाबा ने मना किया है, यह चीज मैं नहीं कर सकता, ये फिल्में संसार की, बाबा ने मना किया है हमें देखनी नहीं है, देख के क्या करोगे संसार की फिल्में? सिन की मां, ये टीवी नहीं टीबी है। चाहे संसार के एक्टर्स गॉडलीवुड बॉलीवुड, गॉडलीवुड तो हमारा है उधर का सारा, वो सारा वो जो जो है, कोई राम की भूमिका कर रहा है बहुत अच्छा है, पर उसका स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है? किस लक्ष्य से कर रहे हैं एक्टिंग? संसार कल्याण के लिए कि पैसे के लिए? वो हमारे हीरो कैसे बन सकते हैं? एक कोई कन्या थी, उसने कोई सीरियल देखा और वो जो कृष्ण था उसमें, उसके पीछे ऐसी दीवानी हो गई, ऐसी दीवानी हो गई, पागल हो गई उस कृष्ण के पीछे, और अपना घर बार छोड़कर मुंबई पहुंची और उस कृष्ण को ढूंढने लगी, और उसको देखा एक पार्टी में डांस कर रहा था वो एक्टर, बड़ा दिल टूट गया उसका, भगवान कृष्ण स्वयं और डांस, वो भी डिस्को डांस। आध्यात्मिक चरित्र क्या है उनका? अव्यक्त महावाक्य, टीचर से मुलाकात, बाप दादा। संसार के एक्टर्स और हीरो हीरोइन रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? रुलाते हैं हंसाते, अशरीरी नहीं बना सकते, ये केवल तुम्हारा काम है, तुम हीरो हीरोइन एक्टर्स का। वो लोग हंसाएंगे, कॉमेडी बहुत करेंगे, एक्शन करेंगे, ट्रेजेडी करेंगे, सब करेंगे, रुलाएंगे, अशरीरी बना सकते हैं क्या? कभी नहीं। बाहर से इतने खुश दिख रहे हैं, अंदर से उनका जीवन देखो क्या है, फ्रस्ट्रेशन। बाहर से चमक धमक है, अंदर से खोखले है, दिखावा मात्र है। एन, एन अर्थात नो, बाबा ने किन किन चीजों के लिए मना किया है, स्टॉप 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 स्टॉप, रोक देना है उसको। उसके बाद में ओ, ओ अर्थात ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, श्रीमत का पालन करना। उसके लिए तो पहले श्रीमत ढूंढनी पड़ेगी क्या है, हर दिन की मुरली से। और आपको अगर चाहिए हो, मधुबन में स्पार्क में एक नई किताब आई है, श्रीमत कंपाइल्ड बुक है, इतनी बड़ी, 300-400 पेजेस होंगे। मधुबन में एक भाई है महेश भाई, अकाउंट्स में, उन्होंने कई सालों से वो कंपाइल की है, एक एक टॉपिक के ऊपर, ड्रेस, भोजन, अलग 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 अलग, और बाबा के महावाक्य। उसका सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है, दोनों मिल सकती है। उसका अध्ययन करना है, श्रीमत क्या है समझना है, अनलॉकिंग श्रीमत, अनपैकिंग श्रीमत, श्रीमत का क्या रहस्य है, तो श्रीमत का फॉलो करना। ओ, उसके बाद है पी, पी भाइयों के लिए ज्यादा है, पी अर्थात प्रिंटिंग लिटरेचर, ये सारे नियम सेंटर निवासियों के नियम हैं। निमित्त बहन से पूछे बिना पाम्पलेट पब्लिश करना, प्रिंट करना, किताबें पब्लिश करना, यह नियम नहीं है यज्ञ का। बिना उनसे डिस्कस किए, बिना उनके बताए, अपने हिसाब से पब्लिश करना चीजें, अपने हिसाब से प्रोग्राम डिसाइड करना, यह प्रोग्राम यहां होना चाहिए, इस गार्डन में होना चाहिए, इस मंगल कार्यालय में होना चाहिए, उसका ये गेस्ट है, वो गेस्ट है, तय भी करना और प्रिंट आउट भी निकाल लेना। यज्ञ के जो नियम है, इस नियम में भी ये नियम इंक्लूड है। प्रिंटिंग लिटरेचर, कोई भी किताब पब्लिश करनी है यज्ञ से परमिशन लेनी है। आजकल इतने लोग अपनी अपनी किताबें निकालते हैं, नाम ब्रह्मा कुमारीज का डालते हैं, अपनी कविता की बुक नीचे ब्रह्मा कुमारीज, और उसमें अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल आ गया तो नाम ब्रह्मा कुमारीज का आ जाएगा। फिर ऐसी वैसी बात बोल दी, कह दी, उसके बाद में क्यू अर्थात क्वालिटी अश्योरेंस। जो भी काम करो क्वालिटी वाला करो, अच्छे से करो। ऐसा नहीं बहन जी ने बुलाया फटाफट कुछ कर लिया और चलो। जैसे वो सबको पता होगा जोक बताते हैं ना, हमारे यज्ञ के 7 डे कोर्स में वो चित्र है। एक परिवार पहले ज्ञान में है, पहले ज्ञान में नहीं है, झगड़ा कर रहे हैं, अभी ज्ञान में है। तो माता कैसे समझाती, चलो फटाफट चलो, ये देखो पहले जब ज्ञान में नहीं थे तो रोटियां बनाते थे, अब ज्ञान में आ गए पूरी तल रहे, आगे बढ़ो। वैसे ही चित्र है ना, वो माता पूरी बला रही है जब ज्ञान में है, और ज्ञान से पहले रोटी है, बस उसने उतना ही लिया क्योंकि टाइम नहीं है इतना सब समझाने को। फटाफट रोटियां, अभी पूरी, आगे बढ़ो, अभी दूसरा चित्र, आगे बढ़ो, अभी तीसरा चित्र, हो गया अब जाओ, हो गया। जो बाहर के लोग आते बड़ी आशा के साथ आते यहां पर, क्वालिटी हर चीज में क्वालिटी हो। उसके बाद में आर अर्थात रिलेशनशिप। यज्ञ में एक दूसरे के साथ किस तरह के संबंध हो, मधुर हो, मनमुटाव ना हो, संघर्ष ना हो, और अटैचमेंट वाले ना हो, बहुत आसक्ति। दो भाइयों में, दो बहनों में, भाई और बहन, इनमें आसक्ति, बहुत ज्यादा आसक्ति, बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी, बहुत ज्यादा घनिष्ठता, बातें करना, लंबा लंबा समय तक मैसेजेस करना, ऐसे संबंध बाबा को पसंद नहीं है। डिटैच चाहिए, काम से काम, सेवा की, वो उधर हम इधर, बस किसी एक में फंस गए तो गए। उसके बाद में एस अर्थात साइलेंस और सॉलिट्यूड, मौन और एकांत, ये नियम है। जितना हो सके मौन का अभ्यास और जितना हो सके एकांत में जाकर मुरली चिंतन। उसके बाद में टी अर्थात ट्रस्टीशिप, घर गृहस्थ में रहना पर यह समझना यह सब कुछ बाबा का है। आज सुबह की मुरली पार्टियों से मुलाकात, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, सब बाबा का है। विदेश में ये बहुत अच्छा नियम है, वो लोग कैसे बात करते हैं, ये बाबा का घर है, ये बाबा की कार है, ये बाबा का कमरा है, हर चीज बाबा का है, बाबा का है, बाबा का है, बाबा का है, बाबा का है। एक सेंटर हम गए थे तो वहां पर इतना अच्छा था, वो जो बहने थी सब्जियां खरीद के लाती थी, सबसे पहले बाबा के ट्रांसलेट के सामने हर चीज बाबा को दे रहे, हर चीज, सब कुछ। एक भाई हमको मिला था, वो भी वैसा ही, सैलरी मिलती है सबसे पहले बाबा को दो, फिर बाबा से लेना, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसका है, उसके द्वारा हमारी पालना हो रही है। मन में ये भाव, वो हमारा पालनहार है। तो ट्रस्टीशिप, जैसे बैंक में मैनेजर होता है, हजारों लाखों करोड़ों उसके हाथों में आते और जाते हैं, उसको खुशी और दर्द, कुछ गम होता है, बिल्कुल नहीं। उसको अपनी सैलरी मिलती है, एक मास के बाद पैसे आ रहे हाथों में, पैसे जा रहे, आए तो खुशी नहीं, गए तो दुख नहीं। लक्ष्मी चंचल है, किसी के हाथ में नहीं रहती। उसके बाद में यू, यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल लाइफ, जिसको हमने सुबह कहा था निधि ध्यासन, ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करना। ज्ञान केवल भाषण देने के लिए नहीं है, ज्ञान केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, ज्ञान परिवर्तन के लिए है, जीवन में धारणा के लिए। उसके बाद में वी, वी अर्थात विजिटिंग अदर सेंटर, एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र जाना है, लेटर लेकर जाना है। ऐसा नहीं हम तो जानते हैं, हमारी बहुत पहचान है, हम तो जा रहे हैं। वैसे ही मधुबन में मधुबन के भाइयों को जान लिया, सीधा पहुंच रहे मधुबन, देखा हम आराम से पहुंच गए, हमारे किसी बहन की हमको आवश्यकता नहीं है, हम सीधा जाएंगे। हमको एकोमोडेशन भी मिल गया, तुमको एकोमोडेशन भी मिल जाएगा, तुम्हारी पहचान भी बहुत है, अनुभव होगा जीरो। दूसरे सेवा केंद्र, एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र जाते समय यज्ञ का नियम और मर्यादा है, लेटर इधर से लेना है और फिर जाना है, ऐसे नहीं चले जाना है। डब्लू, डब्लू अर्थात ये थोड़ा जनरल नियम है हाइजीन की तरफ से, वॉश आफ्टर मोशन, पेट साफ होने के बाद स्नान करना, ये नियम है यज्ञ का। एक्स, एक्स अर्थात एक्सरे, एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग ट्वाइस अ डे, दिन में दो बार खुद की चेकिंग करना, सुबह और शाम के समय, रात के समय नहीं, सुबह के समय, शाम के समय, नुमा शाम के पहले सेल्फ चेकिंग, वो भी एक टाइम है। एक्स वाई, वाई अर्थात योगा ट्वाइस अ डे, दो बार योग, ऑफिशियल टाइमिंग है, अमृत वेला नुमा शाम का योग। और लास्ट जेड, 26वां नियम या मर्यादा, जेड अर्थात इंग्लिश में शब्द है झील, झील अर्थात उमंग उत्साह। जो भी सेवा करो कैसे करो, खुशी खुशी से, जो भी सेवा करो कैसे करो, बिल्कुल नाचते हुए गाते हुए। आज की मुरली में माताएं गीत गाती है, वाह रे मैं, माताएं झूमती है झूले में, कौन से अतीन्द्रिय सुख के झूले में, सुबह सुना ना, माता है शक्ति दल, माता है जगत माता, हद में फंसने वाली नहीं, माता अर्थात जो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती रहे, माता अर्थात जो गीत गाते रहे, कितनी बातें आई है, याद रखना है अपने समान। तो ऐसे ये 26 यज्ञ की मर्यादाएं हैं, रिवाइज करते रहना, याद करते रहना, फॉलो करते रहना, स्वयं को परिवर्तित करते रहना। अभी सब एकाग्र होके बैठेंगे। वैसे तो एक एक्टिविटी करनी थी पर अब लेट हो गया, इसके लिए उसको छोड़ रहे हैं। एकाग्र होके बैठेंगे, एकदम स्थिर, आंखें खुली, अनुभव करेंगे जैसे अव्यक्त बाप दादा मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। बाबा मेरा अब तक का ब्राह्मण जीवन जो था जो है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं, ब्राह्मण बनने के बाद मुझ आत्मा ने जो भूले की है, जो मर्यादा दिखाई है, श्रीमत का उल्लंघन किया कई बार, बाबा मैं उसे स्वीकार करता हूं। आज ब्राह्मणों के इस संगठन के बीच मैं आत्मा ये संकल्प करती हूं, आपकी हर श्रीमत को जीवन में लाऊंगी, एक एक मर्यादा एक एक डायरेक्शन एक एक फरमान आपकी हर आज्ञा का दृढ़ संकल्प से पूर्ण मनोयोग से पालन करूंगी। बाबा की दिव्य शक्तियां मुझ में आ रही, बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया, और अब मेरे दोनों हाथ बाबा अपने हाथ में लिए हुए प्रचंड ऊर्जा का अनुभव, परिवर्तन शक्ति मुझ में प्रवेश कर रही, इस जीवन में जहां जहां अस्थिरता है, असंयम है, बाबा जहां जहां भूले हैं, गफलत है, मैं दृढ़ संकल्प करता हूं इन सब को मुझे ठीक करना है, भटकते हुए इस जीवन को फिर स्थिर करना है, एक नवीन ऊर्जा का संचार, भगवान अब मेरा साथी, बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो विस्मृति की नींद से मैं जाग गई, शांति।